समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Karishma, Helen, good afternoon to all our listeners. You're tuned to Parikraman 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay. With me today is my co-host Karishma. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन के 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे गाड़ियों को रवाना किया। कहा, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं।
कैंपेनिंग इंटेंसिफाइज फॉर द सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस विद सीनियर लीडर्स होल्डिंग मल्टीपल रैलीज टू वू द वोटर्स।
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा।
President Draupadi Murmu departs on a week-long state visit to 2 African nations of Angola and Botswana.
Jammu Kashmir mein Kupwara zile ke Keran sector mein suraksha balon ke saath mudbhed mein 2 ghuspaithi mare gaye.
And flight operations return to normal at Delhi's Indira Gandhi International Airport after yesterday's technical glitch. Yes, and now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the 56th International Film Festival of India, IFFI. And today, Karishma, we are rolling out the red carpet for a very special topic, the 56th International Film Festival of India, IFFI. These enchanting gatherings were storytelling storytelling transcends borders. And this film festivals bring together artists and audiences from every corner of the world.
बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन फिल्म समारोहों को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है? क्या फिल्म समारोह सिर्फ रेड कार्पेट और सेलिब्रिटी सेल्फीज के लिए है या फिर चमकते कैमरों के पीछे कुछ और भी है?
ग्रेट क्वेश्चन करिश्मा। वेल, फिल्म फेस्टिवल्स आर इन फैक्ट कल्चरल ब्रिजेस। They give filmmakers from all over the world, big names and newcomers alike, a platform to share stories that reflect society, dreams and human emotions. And not just that, these festivals often introduce us to films that might never make it to the mainstream theatres. Independent films, documentaries, experimental cinema, they all get a chance to shine.
बिल्कुल, और फिल्म समारोह अक्सर उत्कृष्ट कृतियों के लिए लॉन्च पैड होते हैं और पुरस्कारों के अलावा ये सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देते हैं। कल्पना कीजिए कि नाइजीरिया का एक फिल्म निर्माता जापान के दर्शकों के साथ अपनी कहानी साझा कर रहा है। यही कला की ताकत है जो सीमा पार भी दिलों को जोड़ती है। इसके अलावा समारोह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफर से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक रचनात्मक उद्योगों को समर्थन देते हैं।
Yes, absolutely. Not to mention the educational side, workshops, panel discussions and master classes help young filmmakers learn from the best in the business. In short, international film festivals aren't just celebrations of cinema, they're celebrations of humanity itself. And the 56th International Film Festival of India, IFFI, is set to take place in Goa from the 20th to the 28th of this month. And the curtain raiser event for IFFI was held in New Delhi yesterday.
इस महोत्सव में एक व्यापक और विविध कार्यक्रम शामिल है। 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 4 एशियाई प्रीमियर। इस महोत्सव को 127 देशों से रिकॉर्ड 2314 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जो वैश्विक महोत्सव सर्किट में इफ्फी की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।
यस सर करिश्मा, एंड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया Founded in 1952, it's the country's premier film event organized by the Ministry of Information and Broadcasting and the government of Goa. It aims to celebrate the best of world cinema while promoting Indian films and talent on a global stage. Held annually in Goa, IFFI serves as a platform for creative exchange, discovery of new voices, and fostering cultural understanding through the art of cinema.
इफ्फी दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा फिल्म महोत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म श्रेणी में मान्यता प्राप्त है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से इफ्फी दुनिया भर की शानदार फिल्मों का चयन करता है। इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं, सिनेमा प्रेमियों और उद्योग जगत के पेशेवरों को दुनिया भर के सिनेमा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
Absolutely, and IFFI's International Cinema Section is an assortment of culturally and aesthetically remarkable films from around the world, and it is kept stature high by committing to promote art by showcasing the international films of the year shortlisted by the eminent members associated with the film industry and addressing the curtain raiser, Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, highlighted that this year's IFFI introduces several new initiatives reflecting innovation and inclusivity. The minister highlighted that over 50 women directors have the films featured this year, underscoring the government's commitment to promoting Nari Shakti in cinema.
Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's vision, Nari Shakti. So this year, almost 50 women directors, they directed the films. Almost these 50 films is going to screen. And we want to give an equal opportunity for that. The women directors, this festival is encouraging them and 50 women directors are identified.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय सिनेमा वैश्विक स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है और ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्में हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया इस साल इफ्फी में नए सहयोग प्रस्तुत करेंगे। प्रोडक्शन हाउस, राज्यों और सांस्कृतिक समूहों की एक भव्य कार्निवल परेड एक जीवंत माहौल बनाएगी, जबकि एक बड़ा फिल्म बाजार अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण को बढ़ावा देगा।
Our films are not just being made for Indian audience, their films are now being made for global audience. And International Film Festival is, to an extent, our effort to showcase the cinematic diversity that we have in our country. At the same time, provide opportunities to global filmmakers to come and screen their films to the cinephiles who come in from not just India, from various parts of the world.
Director Shekhar Kapoor said India is both the world's largest filmmaking and film-watching nation, celebrating its people's love for stories. He emphasized that storytelling builds understanding and peace across cultures. Highlighting the film bazaar, he called it a movement that empowers young creators through technology. He added that artificial intelligence should be seen as a creative tool, helping storytellers share India's stories with the world.
The number of young people that come there, and they are all meeting filmmakers of all kinds. And so they tell each other stories. So बहुत है मेरे युवक के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। Festival में नए-नए फिल्में दिखाई देंगी। पूरा नया technology आपको दिखाई देगा। उस technology में फिल्म कैसे बनानी? वो लोग आएंगे पूरी दुनिया से। वो सिखा रहे हैं सबको AI में और अलग-अलग technology. Conversation between international filmmakers and Indian filmmakers and young filmmakers takes place at Film Bazaar.
Yes, and now listeners, we'll talk about the key highlights of the 56th edition. And the opening film of IFFI 2025 is Brazilian author Gabriel Mascaro's The Blue Trail, a sci-fi and fantasy feature which follows a 75-year-old woman whose defiant voyage through the Amazon becomes a quiet manifesto on freedom, dignity and the right to dream. And the film won the Silver Bear Grand Jury Prize at the Berlin International Film Festival 2025.
गाला प्रीमियर सेगमेंट में 18 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 2 एशिया प्रीमियर, 1 इंडिया प्रीमियर और 2 स्पेशल शोकेस स्क्रीनिंग शामिल हैं। रेड कार्पेट पर कलाकारों और फिल्म निर्माताओं की एक प्रतिष्ठित श्रृंखला का स्वागत किया जाएगा।
एंड जापान इज द कंट्री ऑफ फोकस विद पार्टनर कंट्री दिस ईयर, बीइंग स्पेन एंड द स्पॉटलाइट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया।
वहीं जापान आज अपनी जापानी सिनेमा का एक विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें उभरते फिल्म निर्माताओं और लेखकों दोनों के रचनात्मक शक्ति का जश्न मनाया जाता है जो देश की विकसित होती फिल्म भाषा को आकार दे रहे हैं। 6 सावधानी पूर्वक चयनित शीर्षकों में स्मृति और पहचान के अंतरंग नाटकों से लेकर महोत्सव विजेता मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, विचित्र कथाएं, युवा विज्ञान कथाएं और कावात्मक गैर रेखीय प्रयोग।
Yes, and now let's talk about the Indian Panorama segment of the film festival. Indian Panorama is a flagship component of the International Film Festival of India, IFFI, under which the best of contemporary Indian films are selected for the promotion of film art. It was introduced in 1978 as part of the stupendous IFFI umbrella to promote Indian films along with India's rich culture and heritage with the help of cinematic art.
अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पैनोरमा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। भारतीय पैनोरमा का मुख्य उद्देश्य सिनेमाई विषयगत और सौंदर्य परक उत्कृष्टता वाली फीचर और गैर फीचर फिल्मों का चयन करना है ताकि फिल्म कला को बढ़ावा दिया जा सके और इन फिल्मों का गैर लाभकारी प्रदर्शन विभिन्न श्रेणियों में किया जा सके जैसे कि भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह।
Yes, an Indian Film Week held under bilateral cultural exchange programs and special Indian Panorama festivals in India. And the opening film at the Indian Panorama feature will be Amaran, Tamil, directed by Rajkumar Periyasamy.
Aur udghatan gair feature film hogi Kakori.
And a special highlight will be Waves Film Bazaar. Waves Film Bazaar, earlier known as Film Bazaar, was initiated by the National Film Development Corporation, NFDC, in 2007 and has evolved into South Asia's global film market, and it is organized every year alongside the prestigious International Film Festival of India, IFFI, in Goa.
वहीं वेव्स फिल्म बाजार दक्षिण एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के बिक्री एजेंडों और महोत्सव के कार्यक्रम कर्ताओं के लिए संभावित रचनात्मक और वित्तीय सहयोग का एक संगम स्थल है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य फिल्म निर्माण और वितरण में दक्षिण एशियाई विषय वस्तु और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन करना है। यह बाजार दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विश्व सिनेमा की बिक्री को और भी प्रोत्साहित करता है।
And this year's Waves Film Bazaar recommends section showcases 22 films comprising 3 short fiction films, 3 mid-length documentaries, 16 fiction feature films representing 14 languages and 4 countries, and spotlighting several debut directors.
और इसके साथ ही अगर इसको समझें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केवल फिल्मों के बारे में नहीं है, यह दुनिया के हर कोने से पलों, यादों और सार्थक कहानियों के बारे में है। हर साल खूबसूरत गोवा राज्य में आयोजित होने वाला इफ्फी फिल्म निर्माताओं, स्वप्नदर्शियों और दर्शकों को एक साथ लाता है जिनका एक ही प्यार है सिनेमा। विश्व स्तरीय फिल्मों के प्रदर्शन से लेकर युवा प्रतिभागियों और प्रोत्साहित करने तक इफ्फी रचनात्मक और कहानी कहने की भावना का जश्न मनाता है।
Yes, so to conclude, it truly proves that cinema has no language, only emotion. And through festivals like IFFI, India continues to shine as a global stage for art and culture. So here's to the magic of movies, the beauty of diversity, and the power of stories that connect us all. Keep your popcorn ready and your minds open, because cinema isn't just entertainment, it's enlightenment.
Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त।
और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
एंड द करिश्मा, द कंट्री सेलिब्रेटिंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ इट्स नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, अ सॉन्ग दैट हैज इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ इंडियंस टू यूनाइट, राइज एंड सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ द नेशन। And today our correspondent brings a report on the man behind the immortal words of Bande Mataram.
The national song Bande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee, one of India's foremost literary figures and a pioneer of modern Indian literature. Born in 1838 in the Bengal region, Bankim Chandra combined the vision of a reformer with the power of his pen and imagination. Marking the beginning of a new era in Indian fiction, he wrote his first Bengali novel, Durgesh Nandini, in 1865. It was in his celebrated novel, Anand Math, that the patriotic hymn, Vande Mataram, first appeared. The poem was first published in his literary journal, Bangadarshan, in a serialized form, and later included in the complete edition of Anand Math in 1882. The song celebrates the motherland as the embodiment of strength, prosperity, and divinity, and gives poetic voice to India's awakening spirit of unity and self-respect. With Vande Mataram, Bankim Chandra Chatterjee's legacy continues to echo through the corridors of India's freedom story. With Shivang and Soumya, this is Saira Mujtaba for Akashvani News. Vande Mataram,
Vande Mataram. Yes, an acclaimed filmmaker from Sikkim, Tribeni Rai's debut Nepali feature film, Shape of Momo, will have its Indian premiere in the Indian Languages Film Competition category in the Kolkata International Film Festival, KIFF 2025. We have more from a correspondent.
Tribeni Rai's debut Nepali feature film, Shape of Momo, has officially been selected to compete at the Kolkata International Film Festival, where it will have its Indian premiere in the Indian Languages Film Competition category. The Kolkata International Film Festival is taking place from 6 to 13 November. Talking exclusively to Akashvani Gangtok, director Tribeni Rai said,
"Our film is having its Indian premiere at Kolkata International Film Festival. We are competing at the Indian language films category. Very, very excited, especially because I studied in SRFTI and, you know, Kolkata Film Festival is one of the first film festivals that I ever have been to. So it feels extremely special and I'm very, very happy. Our whole team is happy."
Shape of Momo has also been selected for the Singapore International Film Festival, where it will compete in the Asian Feature Film Competition, showcasing the film on a global stage. The protagonist of the film, Gaumaya Gurung, has also been nominated for Best Performance in Asian Feature Film Competition. The Singapore International Film Festival is being held from 26 November to 7 December at Singapore. The film Shape of Momo tells the story of Bishnu and her multi-generational family of women navigating societal norms in a traditional Himalayan village, exploring identity, family bonds, and the courage to challenge expectation. Mainak Chatterjee from Akashvani Gangtok for Parikrama.
अब चलते हैं उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड आगामी 9 नवंबर को अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती मनाएगा। स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में रजत जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 2 नवंबर से 9 नवंबर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के सभी निवासियों को बधाई देते हुए उत्तराखंड की 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 25 सालों में उत्तराखंड ने पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है।
ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के द्वारा उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल, पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है।
श्रीमती मुर्मू ने राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। इस बीच राज्य स्थापना की रजत जयंती पर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में राज्य की विकास गाथा, लोक संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में प्रदेश भर से आए युवाओं और कलाकारों की सहभागिता से उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। राज्य स्थापना की रजत जयंती का मुख्य कार्यक्रम 9 नवंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार व्यापक तैयारियां कर रही है। समारोह में गढ़वाल और कुमाऊं के लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों से आने वाले उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संतोष थपलियाल।
The sparkling backwaters of Alapura hide a growing problem beneath the surface. For years, the houseboat industry here has struggled to manage the massive amount of wastewater produced on board from toilets, kitchens and baths, with many boats discharging this waste directly into the Vembanad, the lake. The fragile ecosystem has been paying the price, but now help is on the way. The CSIR, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, has developed an advanced onboard treatment system designed especially for houseboats, aiming to keep Kerala's backwaters clean and its tourism sustainable. We have more from our Thiruvananthapuram correspondent, Smithy M. Paluruthi.
At present, many houseboats operating in Alapura and neighboring districts still lack proper wastewater treatment systems on board. These are slated to the risk of large volumes of untreated waste being released directly into the backwaters, polluting the fragile ecosystem, degrading water quality and threatening the very lifeline of Kerala's tourism industry. To tackle this problem, the Kerala Houseboat Owners Federation recently approached the CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, CSIR NIST, Thiruvananthapuram, which has already developed a modular wastewater treatment technology. But the challenge for the scientists was to design a system that was compact enough to fit on houseboats, affordable for owners, and easy to operate without compromising the structural stability of the boats. The solution developed by the CSIR NIST addresses these concerns and offering a practical and cost-effective system that in preliminary estimate can be installed for around 1 lakh rupees per boat. The project aims to balance tourism and sustainability, keeping Kerala's backwaters clean and future ready. The new system integrates anaerobic and anoxic microbial processing, ensuring efficient treatment of both black and grey water with minimal sludge generation. Smithy M. Paluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और श्रोताओं, चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। राहुल वीएस छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि एक राउंड शेष रहते हासिल की। उन्होंने इससे पहले नवंबर 2021 में चौथा और 2400 एलो रेटिंग पाने के बाद पांचवा इंटरनेशनल मास्टर का दर्जा हासिल किया था।
एंड मूविंग ऑन टू क्रिकेट, द फाइनल T20I बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, द गैबा इन ब्रिस्बेन टुडे वाज अबैंडन्ड ड्यू टू रेन, गिविंग इंडिया 2-1 सीरीज विक्ट्री। And before play was halted, India reached 52 without loss, with Shubman Gill on 29 and Abhishek Sharma on 23. Australia's captain Mitchell Marsh had won the toss and elected to bowl first.
और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्व की जो आज के दिन हमसे बिछड़े या फिर आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। इस क्रम में पहले बात करेंगे पुण्यतिथि की।
8th of November 1966 is the death anniversary of a remarkable woman and a freedom fighter, Rameshwari Nehru, popularly known as Mataji. She played a significant role in the awakening of women that left an indelible mark in the history of the women's movement in India. Rameshwari Nehru was married to Brij Lal Nehru, who was the nephew of Motilal Nehru.
It was from Anand Bhavan, Prayagraj, that Rameshwari Nehru started her eventful career, which was dedicated to the cause of women and the freedom of the motherland.
Rameshwari Nehru started the first women's journal in Hindi, Stri Darpan, in 1909 from Allahabad. It was through Stri Darpan that she tirelessly espoused the cause of women's rights.
She became an active member of the Women's India Association and All India Women's Conference. She had also started a Nari Niketan to help women rescued from brothel houses.
When the British government appointed the Age of Consent Committee in 1928 to fix the consent for girls, Rameshwari was the only Indian woman member of the committee.
This committee's report formed the groundwork for the Child Marriage Restraint Act. She said,
Swaraj cannot be attained by people whose other halves are stricken by paralysis. The battle of Swaraj has to be fought and won by men and women alike.
Post-independence, she played a significant role in the rehabilitation of the people who had migrated due to the trauma of partition.
In 1955, the Government of India honoured Rameshwari Nehru with Padma Bhushan for her outstanding contributions, especially in the field of rehabilitation of widows, orphans, children and old people.
She also won the Lenin Peace Prize in 1961.
Today we will also talk about the Marudu brothers of Tamil Nadu. Periya Marudu and Chinna Marudu were born to Mokka Palanisami Devar and his wife Ponnatha, who served as the second king of Sivagangai Kingdom.
But their time in the palace was to soon come to an end. While the brothers were in their early 20s, the Nawab of Arcot, along with his East India Company soldiers, killed the queen and the king. The Marudu brothers escaped, but they came back after several years and claimed back the fort after a fierce battle.
More than 50 years before the Sepoy Mutiny of 1857, the Marudu Pandiyar brothers had led a concerted struggle against the oppressive practices of the British. On 16th of June 1801, the brothers issued a proclamation of independence from the Tiruchi fort, calling for people of all castes and communities to unite in their fight against European domination. Their attacks on East India Company were so fierce that EIC sent a huge force and captured the brothers and executed hundreds of their supporters.
Yes, and we're also remembering John Milton, who passed on this day in 1674. He was an English poet, a polemicist and civil servant. His 1,667 epic poem, Paradise Lost, was written in blank verse and included 12 books written in a time of immense religious flux and political upheaval. It addressed the fall of man, including the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan and God's expulsion of them from the Garden of Eden. Paradise Lost elevated Milton's reputation as one of history's greatest poets. He also served as a civil servant for the Commonwealth of England under his Council of State and later under Oliver Cromwell.
और इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं बी एन रेड्डी को, जो एक कुशल निर्देशक, सफल निर्माता और मौलिक पटकथा लेखक भी थे. उनका पूरा नाम बोम्बी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी था, जो भारतीय सिनेमा में एक जाना माना नाम थे. इन सभी क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देते हुए साल 1974 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई और फिर उसी वर्ष के दौरान उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.
And we're also remembering Subroto Mukherjee, who passed on this day in 1960. He was an Indian military officer who was the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. He was awarded several honours during the course of his three-decade-long career, which ended by his untimely demise in 1960. Mukherjee has been called the father of the Indian Air Force.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं अरविंद त्रिवेदी को, जिन्हें ज्यादातर लोग रामायण के रावण के नाम से भी जानते हैं. उनकी गूंजती आवाज, दमदार संवाद और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने रावण के किरदार को ऐसा जीवन दिया था कि लोग आज भी उन्हें उसी रूप में याद करते हैं.
कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो. रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है. यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है. रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति.
Yes, and you're also remembering Raja Rao, who was born on this day in 1908. He was an Indian-American writer of English language novels and short stories, whose works are deeply rooted in metaphysics. Rao has been described as a powerful writer and a scholar, well-versed in Hindu, Buddhist and Christian philosophies. The Serpent and the Rope in 1960, a semi-autobiographical novel recounting a search for spiritual truth in Europe and India, established him as one of India's finest Indian prose stylists and won him the Sahitya Academy Award in 1963. And for the entire body of his work, Rao was awarded the Neustadt International Prize for Literature in 1988.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं सितारा देवी को, जिन्हें क्वीन ऑफ कथक भी कहा जाता था. उन्होंने बचपन से ही कथक करना शुरू कर दिया था और अपने पिता सुखदेव महाराज से उन्होंने कथक सीखना शुरू किया और बहुत कम उम्र में ही मंच पर छा गई. उनकी नृत्य शैली में ताकत, तेज ताल, सुंदर घुमाव और अद्भुत भाव अभिनय देखने को मिलता था. उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथक को पहचान दिलाई.
Yes, so with that, we wind up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. Till the next time, this is Karishma and me, Abhishek Mukhopadhyay.
Namaskar.
Namaskar.